श्रीमद भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 13। त्रिभिर्गुणमयीर भावेर एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभि जानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तीन गुणों सतो रजो तथा तमो के कारण के द्वारा मोहग्रस्त यह संसार सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। मोहग्रस्त होने का मतलब है उपाधियों से ग्रसित होना। मैं ये शरीर हूँ और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। जब तक ये भावना रहेगी व्यक्ति भगवान को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएगा। और ये धारणा अलग अलग हो सकती है। सतोगुणी व्यक्ति ब्राह्मण के अनुसार कार्य करेगा, रजोगुणी व्यक्ति क्षत्रिय के अनुसार कार्य करेगा, रजोगुणी तमोगुणी मिक्स व्यक्ति वैश्य और तमोगुणी व्यक्ति शूद्र के तरह कार्य करेगा। तो ये तीनों ही अवस्थाएं आत्मा के लिए एक उपाधि मात्र हैं। और अगर व्यक्ति केवल इन उपाधियों में फंसा रहा और भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करा तो भगवान को नहीं समझ पाएगा ठीक प्रकार से, अपितु भगवान को अपने ही जैसा एक सामान्य व्यक्ति सम्मानेगा। और यही बात भगवान बता रहे हैं। भगवान को समझने का अर्थ है भगवान को गुणातीत समझना और अविनाशी समझना। यानी कि ये नहीं समझ सोचना कि भगवान गुणों के द्वारा बद्ध होकर कुछ कार्य करते हैं या फिर भगवान मर गए, भगवान पहले नहीं थे और अब द्वापर युग में प्रकट हुए थे और अब जो है खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार की धारणा जो है ये व्यक्ति की बद्धावस्था का परिचायक है। तात्पर्य सारा संसार प्रकृति के तीन गुणों से मोहित है। ये पहली लाइन ही कितनी गंभीर है। इस जगत में हम देखते हैं चाहे चिड़िया हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, सभी लोग माया से मोहित होकर के कृष्ण से विमुख हैं। कृष्ण की सेवा है, कृष्ण से प्रेम करने का उद्देश्य ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बहुत ही गंभीर बात है। जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। और इस कारण से ऐसे लोगों से सुनने से हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। और जब हम भगवद गीता और भागवतम को सुनते हैं तो श्रद्धा से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम भी माया के द्वारा मोहित हैं। बड़ी विकट स्थिति है कि हम अपने बारे में कुछ नहीं जानते। तो इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कि मैं ये मानता हूँ, आई थिंक सो, ये हमें हास्यास्पद स्थिति में डाल देता है, क्योंकि हम अपने ही बारे में नहीं जानते तो हमारे सोच विचार का क्या फायदा होता है। इसलिए सत्य को जानने के लिए शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। माया से मुग्ध जीव कृष्ण को नहीं समझ सकता है, इसलिए भगवान ने कृपा करके वेद पुराण शास्त्रों की रचना करी है, हमें दिए हैं, ताकि हम उसको पढ़ करके भगवान से को ठीक से समझ सकें। और ये भी महत्वपूर्ण बात है, जब तक व्यक्ति भगवान को ठीक से नहीं समझता है उसकी इन गुणों से मुक्ति होना असंभव है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं, और जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थाई नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मोहग्रस्त होने का अर्थ क्या है। मोहग्रस्त का है अर्थ हम उपाधियों से ग्रसित रहें कि मैं इन चारों व्यवस्थाओं में कुछ हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात है कि भक्ति में इन चारों उपाधियों को तुरंत निरस्त नहीं किया जाता है। भक्ति के प्रोसेस में हम उपाधियों से युक्त रहते हैं, लेकिन उस उपाधि से युक्त होकर के हम भजन शुरू करते हैं। इसे कहते हैं स उपाधिक भजन। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते करते अपने आप ही धीरे धीरे ही ये उपाधियां नष्ट होने लगती हैं। तो भक्त जो है बाह्य रूप से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र की तरह कार्य कर सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से उसका भाव यही रहता है कि वो कृष्ण का नित्य अंश है। उदाहरण के लिए, जैसे कोई नदी होती है और जब व्यक्ति को नदी क्रॉस करनी होती है तो उसको बहना भी पड़ता है, उसके साथ नदी के साथ बहना पड़ता है और नदी को पार करने का प्रयास भी करना होता है। तो ऐसे ही हम लोगों को अपने जगत में, इस जगत में जो रह रहे हैं उसमें हमें बाह्य कृत्य जितने भी हैं, जो भी हमारी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हम हैं, उसमें करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। लेकिन हृदय में इस बात का स्मरण करना चाहिए कि अंततो गत्वा हम भगवान कृष्ण के दास हैं और हमारा असली कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को प्रसन्न करना ही है। और ये भावना हरे कृष्ण मंत्र का जप अच्छे से करने से अधिक उदित होने लगती है स्वभावतः हमारे हृदय में। और जब ये बात हृदय में उदित हो जाती है तो एक और बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है, और वो ये कि मैं किसी फल के लिए कुछ प्रयास करूं। वस्तुतः जब हम ये समझ लेते हैं कृष्ण का मैं दास हूं और ये समझ लेते हैं कि कृष्ण की सेवा करना ये मेरा धर्म है, एकमात्र धर्म है, तो व्यक्ति इस जगत में कुछ फलों के लिए प्रयास नहीं कर सकता करता मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और भगवान की सेवा में भी वो जो कुछ प्रयास करता है उसका फल अगर उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो निरुत्साहित हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कृष्ण का अंश है और सभी कुछ कृष्ण पर निर्भर करता है। तो ये बातें बहुत गहरी हैं, और ये भगवान का नाम जप करने से और शास्त्रों का श्रवण करने से धीरे धीरे हमारी चेतना में आने लगती है कि मैं इस जगत का कंट्रोलर नहीं हूं, कंट्रोल करने वाले, इसका नियंत्रण करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं केवल एक तुच्छ अंश मात्र हूं भगवान का, और मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना जितनी शक्ति भगवान ने मुझे इस जीवन में, इस शरीर में दी है। तो इस प्रकार से हम मोह से धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो केवल इन आसक्तियों में चिपके हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, और भगवान का भजन नहीं करते हैं, तो वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कुछ भी हो सकता हूं, जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यानी कि मान लीजिए मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन इसके लिए गर्व करना ये बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि ये जो उपाधि है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, कभी भी किसी भी क्षण ये उपाधि नष्ट हो सकती है। लेकिन जो मेरा सच्चा स्वरूप है कृष्ण के दास के रूप में, ये जन्म जन्मांतर और हमेशा शाश्वत रूप से मेरे साथ में रहेगा, तो इसके अनुरूप कार्य करना ये बुद्धिमानी है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमरीकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में हैं। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब हम इस प्रकार से सोचने लगते हैं कि मैं रूसी हूँ, ब्राह्मण हूँ, भारतीय हूँ, हिंदू, मुसलमान हूँ, तो एक दूसरे से द्वेष करना भी हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। ये व्यक्ति मेरा है और दूसरा व्यक्ति पराया है, ये मेरा दुश्मन है, इतने लोगों को मैंने मार दिया, बाकी लोगों को भी मार दूंगा, मेरे जो दुश्मन हैं और ये मेरे मित्र हैं, इस प्रकार की भावना ये बहुत बड़ा माया का बंधन का सूचक है। प्रभुपाद जी इसको श्रीमद् भागवत में भी समझाते हैं, जब तक हम लोगों को दोस्त और दुश्मन के रूप में बांटते रहेंगे तब तक समझ में आना चाहिए कि हम लोग माया के बंधन में पूरी तरह से बंधे हुए हैं। बहुत ही गंभीर विषय है ये बात का। और जब भगवान श्री कृष्ण की हम भक्ति करते रहते हैं तो सहज रूप से सभी जीवात्माओं के प्रति सहज प्रेम होता है एक भक्त का, और सभी जीवात्माओं का भी प्रेम होता है एक भक्त के प्रति। और जितना हम इस दुश्मन और दोस्त की भावना से, इस द्वैतता से प्रभावित हैं, उतनी मात्रा में भगवान कृष्ण को और उनसे अपने संबंध को समझने में हमारी कठिनाई होगी। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है। बहुत ही सुंदर बात है। इस जगत में कोई भी वस्तु देखते हैं तो हम अपने आप ही प्रश्न करते हैं कि ये वस्तु किसने बनाई है, ये बिल्डिंग किसने बनाया है। लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था है जगत में, समय से सूर्य उग रहा है, सारा कुछ देखेंगे, गर्मी आती, सर्दी आती, बरसात आता, सब कुछ अपने व्यवस्था से चल रहा है, और हम ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कौन है। उसका कारण है क्योंकि माया से ग्रस्त जीव केवल इस प्रकृति को देखकर ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसके पीछे कोई एक व्यक्ति हो सकता है। देखिए अद्भुत बात क्या है, अद्भुत बात ये है कि मैं कोई एक कुर्सी देखता हूं तो ये तुरंत अनुमान लगा लूंगा कि ये कुर्सी किसी ने बनाई है, लेकिन मैं ये कल्पना नहीं कर पाता हूं कि इतना बड़ा विश्व जो है वो किसी एक व्यक्ति ने बनाया होगा, और वो केवल एक ही व्यक्ति ने बनाया होगा। ये क्योंकि मेरी कल्पना के, मेरी बुद्धि के परे चला जाता है, इसलिए इस बात को स्वीकार करने में मुझे तकलीफ होती है। और ये माया का प्रभाव। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। जो रजगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहां तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। यही बात मैं समझा रहा था अभी कि जो लोग सतोगुणी भी हैं वो भी केवल ब्रह्म की, परम सत्य की कल्पना एक निर्विशेष ब्रह्म तक कर सकते हैं अगर अपनी शक्ति से करें। वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इसके पीछे एक भगवान है, एक व्यक्ति है चिन्मय शरीर वाले। इसीलिए हमको सत शास्त्रों और भक्ति के पथ का आश्रय लेना होगा, तब हम भगवान को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। आप भगवान के स्वरूप की बात तो छोड़ दीजिए, यही कल्पना करना या इसको स्वीकार करना कि भगवान के नाम में ही भगवान ने अपनी सारी शक्ति भर के रखी है, ये कहां समझ में आता है बद्ध आत्मा को? नहीं समझ में आता। इसीलिए हमें भगवान के बारे में प्रामाणिक गुरुजनों से, शास्त्रों से सुनना होगा, तब हम भगवान के बारे में ठीक ठीक जान पाएंगे। जैसे अभी भगवद गीता में आगे आएगा, अर्जुन के सामने उनके सखा के रूप में भगवान श्री कृष्ण थे, तो क्या अर्जुन सोच सकते थे कि इन्हीं भगवान के आगे या मेरे मित्र के शरीर में पूरा विश्व आया हुआ है? तो ये अचिंत है, अचिंत वैभव है भगवान श्री कृष्ण का, जिसको हम भगवत कृपा से ही समझ सकते हैं, और वो कृपा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा आती है। तो जो भगवान का सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल इत्यादि है, वो भी केवल सतोगुण के द्वारा हम समझ नहीं सकते जब तक हम पूरी तरह दिव्य अवस्था में ना हो, गुणातीत अवस्था में ना हो, तब तक ये बातें समझ में नहीं आती। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। तो कृष्ण भावनामृत की स्थिति को तुरिया बोला जाता है, जो कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से ऊपर की स्थिति है। इसको वासुदेव स्टेट भी बोलते हैं, और इस अवस्था में व्यक्ति को भगवत साक्षात्कार होता है। तो यानी इस समय, पर्टिकुलरली इस समय, हम लोग भगवान की महिमा को अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से नहीं समझ पकड़ पाएंगे। इसलिए हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए या उनसे सुनना चाहिए जो इस तुरीय अवस्था में हो, जैसे कि श्रील प्रभुपाद और यहाँ पे पूर्ववर्ती आचार्य गणों को प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। और वो लोग समझ पाए, वो लोग समझते हैं कि कौन भगवान है और फिर उनकी बात पे विश्वास रखकर, श्रद्धा रखकर जब भक्ति पे चलते हैं, भक्ति के पथ पे चलते हैं, तो फिर धीरे धीरे करके हम आगे प्रगति करते हैं, तुरिया की अवस्था को प्राप्त करके हम लोग भगवान की महिमा को समझ पाएंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता को पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उन इसमें उन भक्तों के साक्षात्कार हैं जो कि भगवान का महिमा का अनुभव अपने हृदय में कर रहे हैं और फिर जब वो बोलते हैं तो फिर वो महिमा प्रकट होती है। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण की महिमा हम जैसे बद्ध जीवों को जानने के लिए जानने का कोई संभावना नहीं। इसीलिए नाम जप के साथ साथ गीता भागवतम का श्रवण करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा।